Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari. ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋಧನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋಧನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮೋನ ತೀರ ವನಚಾರಿ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, 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 Haribol, Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Sato Jayamudiraye Nashta Praesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki. Humgyat Virandasya Jnananjana Shalakaya Chaksharan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam Sabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Vadati Swabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam, Shri Guram Vaishnavamsya, Shri Rupam Satrajatam, Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam, Harijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Madam, Sahagana Lalita Shri Vishakarnakamsya, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesha Shunyavadi, Asyapta Deshatarine, Namo Vishnu Padaya, विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवाशवानवी देवी नयिताय कृपाब्धये विश्व संबंध विज्ञान दायिने तवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांतद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये हेप्रलम्बार साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविद्वाभूमेश्वर निर्देशा सज्जनप्रिय वैश्वसारभाव श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महामदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यग्रन्थारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रष्टालिव्यसेव्यमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेण स्वनेर्गोपी गोपीनाथः श्रीयस्तु नः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषवानसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज हम भगवद्गीता का एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के आधार के ऊपर मैंने ये संस्था को स्थापना किया है। मैंने कहा कि इस श्लोक को मैंने अपने जीवन में उतारा है और इस श्लोक को अपने जीवन में उतार के मैं इस संस्था की स्थापना मैंने किया है। तो ये श्लोक है भगवद्गीता का दूसरे अध्याय से, मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय गुरुनंदना बहुशाकायनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेह गुरुनन्दना बहुशाकायनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय कुरुनन्दना बहुशाकायनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां। इसी बात है श्लोक व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय कुरुनन्दना बहुशाकायनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धे एकेय कुरुनन्दना बहुशाकायनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धे एकया गुरुनंदना पौषाकाय नन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धेर् एकेय गुरुनन्दना बहुशाकाय नन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां और कोई व्यवसायात्मिका बुद्धेर् एकेय गुरुनन्दना बहुशाकाय नन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धेर् एकेय गुरुनन्दना बहुशाकाय नन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनां अनुवाद और तात्पर्य इस ड्राइंग देश ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जो इस मार्ग पर चलता है वे प्रयोजन में दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञान नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांध कर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ अशुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कर्म आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहांत बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना बिना व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा डालियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य को कर्मों से कृष्ण मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जहां तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और कृष्ण भावनामृत की दिशा में कर्म करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान यस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और उनके को और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से इंद्रतृप्ति की कोई संबंध नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे मैंने कहा, श्री प्रभुपाद जी एक बार इस श्लोक के ऊपर प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा, ये जो संस्था की जो सफलता है, ये श्लोक को मैंने अपने जीवन में धारण किया इसलिए सफलता प्राप्त हुई। अभी समझना चाहिए इस श्लोक का अर्थ क्या है। सबसे पहला श्लोक में कहा गया है व्यवसायात्मिका बुद्धि। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण, हमारे पास एक ऐसा एक हथियार समझ लीजिएगा। बुद्धि ऐसा चीज है जो सबके पास है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस बुद्धि को कहां लगाएंगे। वेयर आर वी गोइंग टू पुट आवर इंटेलिजेंस। जब हम इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे इंद्र तृप्ति के लिए, तब उस बुद्धि को अव्यवसाय नाम कहा गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, वो बुद्धि जो आत्मा की ओर केंद्रित किए हुए रहता है, तो उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा गया है। 2 प्रकार का व्यवसाय है, एक है आत्मिक व्यवसाय यानी आत्मा का व्यवसाय, दूसरा है शरीर का व्यवसाय। जो कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई अन्य कामकाज करता है, ये सब शरीर का व्यवसाय हुआ, यानी वो कार्य जिसके द्वारा शरीर का पालन पोषण होता है। लेकिन आत्मा का पालन पोषण करने वाला कार्य को कहा गया है व्यवसाय आत्मिका, आत्मिका व्यवसाय। वो बुद्धि जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय आत्मिका हो यानी आत्मा की उन्नति हो, उस प्रकार का बुद्धि का लक्षण क्या रहेगा है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, एक ही कुरुनंदना का अर्थ क्या है? ये कहे कुरुनंदना का अर्थ ये है, इस संसार में भले ही अनेकों अनेकों चीजें क्यों ना हो, लेकिन केवल वो एक ही चीज के ऊपर विचार करता है, उसी चीज को करता है, विचार करता है उस चीज के ऊपर, और इतना विश्वास रखता है केवल मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक यह कुरुनंदना करती है। जैसे आपको परपोर्ट में या इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक कोट करते हैं। वो कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृत है। ये जो श्लोक में ए का ये जो शब्द है बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये का ये शब्द का व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृत है। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अर्थात में जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है वह अनेक चीजों को करता जाता है लेकिन एक के भी संतुष्ट नहीं रहता है। जैसे एक बंदर है, कभी एक शाखा के ऊपर बैठ के कुछ करता है, बाद में कूद के कहीं और जाता है, बाद में कहीं कूद के कहीं और जाता है। वैसे ही जो कृष्ण भक्ति में नहीं है या कृष्ण भक्ति नहीं करता है, वो बंदर जैसा एक शाखा से दूसरी शाखा में वो घूमता रहता है और पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवन समाप्त होने के बाद कोई और योनि में बैठ जाता है, उधर भी कुछ करता है, बाद में कुछ और योनि में बैठ जाता है। ऐसा पूरा 84 लाख योनियों में बंदर जैसा भटकता रहता है। लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, उनका लक्ष्य केवल एक ही रहता है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनको एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में ये श्रद्धा की व्याख्या करते हैं। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द है विश्वास, विश्वास कहले। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, लेकिन किस प्रकार का विश्वास? श्रद्धा शब्द है विश्वास कर सुदृढ़ निश्चय, निश्चय कर चुका है। क्या निश्चय कर चुका है? कृष्ण भक्ति कर ले, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ये है, इसको श्रद्धा कहा गया है। जैसे एक पत्नी को अपनी पति में श्रद्धा है, इसका अर्थ क्या है? मैं अगर पति की सेवा करूंगी, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी वो श्रद्धा में कमी हो जाती है, वो क्या सोचती है? ठीक है, पति का तो जरूर सेवा करूंगी, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ रिजर्व में रखना पड़ेगा किसी को भी। तो इसको अश्रद्धा कहा जाता है। इसी प्रकार जो एक भक्त होता है, वो एक जानता है, मैं अगर कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कितना भी सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी वो परिवार के दृष्टिकोण से भी कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी है वो सब गौण है। समय मिलेगा तो मैं करूंगा, लेकिन अस्तित्व में और सब चीज करने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व में ये श्लोक आता है भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 40-41 श्लोक में। और सबको मालूम है भगवद गीता का दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक से 30वां श्लोक तक भगवान आत्मा की ज्ञान देते हैं, शरीर और आत्मा का भेद का ज्ञान देते हैं। उसके बाद 31वां श्लोक से लेकर 37वां श्लोक तक कर्मकांड के अनुसार, हे अर्जुन तुमको अपने कर्तव्य करना होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको युद्ध करना है, ऐसा समझाते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो बात। बाद में भगवान कहते हैं 38वां श्लोक में, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, किसके लिए करो? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो। भले ही लोग कहें तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने के लिए, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरी आदेश को मानना, इससे तुम युद्ध करो। बाद में 39वां श्लोक में भगवान ने कहा कि एषा ते विदा सांख्ये बुद्धि योग तम इमं सुनो। अभी तक मैंने सांख्य योग का वर्णन किया है, अभी तुम सुनो। किसका बात सुनो? बुद्धि योग सुनो। तो ये बुद्धि योग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। केवल इस बुद्धि योग शब्द को भगवद गीता में वापरा गया है, अन्य कोई भी उपनिषदों में या ज्ञान योग आता है या कर्म योग आता है लेकिन ये बुद्धि योग शब्द करके भगवान ने भगवद गीता में खास करके इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि योग ऐसा है, कर्म और ज्ञान का जब दोनों का संयोग होता है उसको बुद्धि कहा गया है। अभी समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्ञान है कोई कार्य करने में, कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको मालूम है, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो क्या फायदा। मान लो कोई चीज करने जा रहे हो लेकिन आपको कैसे करना चाहिए अगर वो नहीं मालूम है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर आधारित जब हम कुछ कार्य करते हैं, जय श्री राधा गिरधारे भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निकाय की, जब हम ज्ञान के ऊपर आधारित होकर कार्य करते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। तो इस ज्ञान और कर्म के बीच में जो योग है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है? बुद्धि है। इसलिए भगवान ने कहा, अभी मैं बुद्धियों का वर्णन करने वाला हूं। बुद्धियों का वर्णन करने वालों का अर्थ क्या है? कैसे आप ज्ञान को, यानी अभी जो मैंने बताया, उस ज्ञान को कर्म के रूप में परिणित कर सकते हो या कर्म के साथ जोड़ सकते हो, इन दोनों की जोड़ने की जो विधि है उसको बुद्धि योग कहा गया है। यानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान के ऊपर आधारित होकर कर्म करने की जो क्रिया है उसको बुद्धि योग कहा गया है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, मैं अभी तुमको बुद्धि योग सुनाऊंगा। अस्तित्व में एक तरीके से बताया जाए बुद्धि योग कुछ और नहीं है, कर्मयोग है। लेकिन ये बुद्धि योग किस प्रकार का कर्मयोग है? वो ऐसा कर्म है जो ज्ञान के ऊपर आधारित हो। क्या है वो ज्ञान? जो देहात्म बुद्धि से परे जो ज्ञान है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान के ऊपर आधारित हुए किए गए जो कर्म है उसको बुद्धि योग कहा गया है। अभी बाद में 40वां श्लोक में इस बुद्धि योग का महिमा को वर्णन करते हैं कि नेहा विचरणाशोस्ति प्रत्यवाय नविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायतो महतो भयात्। हे अर्जुन, जरा सा भी थोड़ा सा भी अगर कर लेता है बुद्धि योग को तो महान भय से मुक्त हो जाता है। कम से कम वो मनुष्य जन्म को तो प्राप्त करता है, वो कम से कम चार पैर तो नहीं मिलेगा उनको अगर थोड़ा सा भी इस बुद्धियोग को कर लेता है। तो उस बुद्धियोग का वर्णन करने से पहले भगवान इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कहते हैं ये क्या है, ये बुद्धियोग जिसके बारे में वर्णन करने वाले हैं ये है क्या। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ऐसा बुद्धि जो एकदम बिल्कुल मान के बैठा है कि क्या मान के बैठा है, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब फालतू चीज है इसके सामने। जब तक इस प्रकार की साक्षात्कार हृदय में नहीं रहता है तब तक कृष्ण भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। हमको ये निश्चय कर लेना चाहिए अगर मैं जप कर रहा हूं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं गीता भागवत पढ़ रहा हूं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं मुझे कुछ और की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास, इस प्रकार का विश्वास के ऊपर ही पूरा प्रभुपाद जी ने संस्था को स्थापना किया है। श्री प्रभुपाद जी को ये पूरा विश्वास था अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बाद में देखा जाए इसी श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति करने का अर्थ क्या है। कृष्ण भक्ति करने का अर्थ है कि गुरु के आदेश के अनुसार अपने कार्यों को करना। यानी भले ही शास्त्रों में कहा गया है भक्ति के विषय में ये इसे भी कर सकते हो भक्ति, वैसा भी ये करने से भक्ति होता है, वो करने से भक्ति होता है, ये करने से भक्ति होता है। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हुआ तो आप जाएंगे एक दुकान में, एक केमिस्ट के शॉप में, दवाई के दुकान में जाएंगे, वो मलेरिया के लिए अनेकों अनेकों प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन आप कौन सा दवाई लोगे? आप वही दवाई लोगे जो डॉक्टर ने कहा है कि नहीं। तो ऐसे ही भले ही शास्त्रों में अनेकों अनेकों उपदेश भले ही कहा गया है लेकिन आप कौन सा चीज को पालन करोगे? जो आपके गुरु ने कहा है उसी को पालन करेंगे। भले ही अन्य चीजें शास्त्र में कहा गया है अच्छा भी लग सकता है, आप कर भी सकते हैं, अनेकों लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे? वही चीज करोगे जो गुरु ने कहा है। तो इधर व्यवसाय आपने कहा बुद्धि एक यह गुरु नंदना अर्थ क्या है? एक यह का अर्थ है कि गुरु के आदेश को पालन करना। अगर मैं गुरु के आदेश को पालन करता हूं तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी, ये गुरु जी ने क्या कहा था, श्रील भक्तिवत्सल ठाकुर ने क्या कहा कि आप अंग्रेजी में कृष्ण भक्ति का चैतन्य महाप्रभु आंदोलन को विश्व भर में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी का ये आदेश श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 1922 में दिया था, तो वो समय से लेके पूरा अंतिम सांस प्रभुपाद जी लिए तब तक उनके मन में एक ही चीज गूंज रहा था। क्या है वो एक ही चीज जो गूंज रहा था, मैं कृष्ण भक्ति को सारा विश्व में कैसे स्थापना करूं, ये मेरा गुरु का आदेश है तो इसको मैं कैसे पालन करूं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं सोच रहे थे। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने क्या व्यवहार किया, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सोचा, इसलिए हम सब लोग इधर बैठे हैं, है कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा ये संस्था को स्थापना करने के पीछे ये जो श्लोक है, एक यह कुरुनंदना, ये मैंने अपने जीवन में धारण किया है। मैं जब भी कुछ भी किया हूं केवल इसी बात को केंद्रित करके किया हूं, क्या ये जो मैं कर रहा हूं मेरी गुरु की वाणी को आज्ञा को संपूर्ण करने के लिए है तो मैं करूंगा, नहीं तो वो नहीं करूंगा, उससे कुछ मेरा मतलब नहीं है। इसको शरणागति कहा जाता है। अगर आपको याद होगा पिछली बार मैंने संडे पे इस प्रोग्राम दिया था तो शरणागति के 6 लक्षणों के ऊपर हमने प्रवचन दिया था। तो शरणागति के ऊपर 6 लक्षणों के कितना ही प्रवचन भी देंगे तो कृष्ण का शरण लेने का अर्थ है गुरु का शरण लेना। गुरु का शरण लिए बिना हम कृष्ण का शरण नहीं ले सकते। तो गुरु का शरण लेने का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि जो गुरु जी दे रहे हैं सुख सुविधा का अनुभव करना, नहीं, शरण का अर्थ यह नहीं कि उनके द्वारा दिया गया सुख सुविधा को अनुभव करना, उल्टा उनको सुख पहुंचाना, इसको शरण कहा जाता है। उनको आनंद प्रदान करना, इसको शरण कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस अभी गुरु के शरण में है, इसका अर्थ क्या है, गुरु जी जो देंगे सब सुविधा को हम स्वीकार करेंगे, हम उसको भोगेंगे, उसको गुरु भोगी कहा जाता है। लेकिन हम गुरु सेवी नहीं कहा जाता है। गुरु सेवी वो है जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु को कैसे सुविधा प्रदान करूं और गुरु की आज्ञा को कैसे पालन करूं, इसके बारे में विचार करता है। तो जो गुरु का इस प्रकार विचार करता है, गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, उनके जीवन में कुछ और नहीं रह जाता है। वो एक बिल्कुल एक तरीके का पागल हो जाता है। सारा समाज उसको कहता है तुम पागल हो गए हो। क्यों? क्योंकि उनके विचारधारा हमेशा हर प्रकार का सोच विचार केवल एक ही चीज में रहता है कि मैं अपने गुरु का आदेश को कैसे पालन करूं। जैसे श्री प्रभुपाद जी जब प्रयास कर रहे थे मैं कैसे विदेश में जाके इस संस्था को स्थापना करूं, कैसे प्रचार करूं, उनके स्वयं के गुरु भाइयों ने कहा था ये बड़ा असंभव काम है, बहुत मुश्किल है। श्री भक्तिवत्सल ठाकुर भी अपने गुरु भाइयों, आपके गुरु भाइयों को बहुत भेजा है लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। आप ऐसा कार्य को संपन्न करने जा रहे जो नामुमकिन है, आप जाओ ये मत करो, ऐसा बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि मत करो करे, फिर उत्साह किया, प्रोत्साहन नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी केवल एक ही सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, श्रद्धा शब्दे विश्वास। क्या विश्वास था, विश्वास था कि कृष्ण भक्ति कर लें। कृष्ण भक्ति करने का अर्थ क्या है, गुरु का आदेश पालन करना। मगर मैं गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं, सर्व कर्म कृत होय, ये समझ लो मैंने सब कुछ कर दिया है। अगर नहीं भी किया है तो समझ लेना कर दिया है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी प्रकार के कार्य क्यों ना हो। इससे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ प्रकार क्रमशः यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे जो कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ अशुभ फल का चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे आगे कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बांधकर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति परिवार के साथ, कोई समाज के साथ, कोई राष्ट्र के साथ बांध के कार्य करना चाहता है, लेकिन उनको इस सब के साथ कोई लेन देन नहीं रहता है। उनको केवल एक ही चीज की चिंता रहता है कि मैं कैसे कृष्ण भावना की स्थापना करूं, कैसे मैं गुरु की आज्ञा को पालन करूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम अनेकों अनेकों चीजों के बारे में चिंता करते हैं, अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरा वृद्धापा में क्या होगा, अगर मैं अगर भक्ति को करने लग जाऊंगा थोड़ा सा धंधे में थोड़ा कम काम ज्ञान दूंगा तो मेरे बाल बच्चों को क्या होगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वो कैसे कर पाऊंगा, बहुत सारे मन में इस प्रकार की चिंताएं आती हैं। लेकिन ये सब माया के अलग अलग स्वरूप है। अस्तित्व में श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो भी श्री प्रभुपाद जी के जैसे वो भी इतने ही शरणागत थे। एक बार हम किसी से प्रवचन सुन रहे थे श्री प्रभुपाद जी शिष्य के, तो बता रहे थे श्री प्रभुपाद जी संस्था को स्थापना किए थे वो समय माहौल क्या था इस्कॉन में। तो कह रहे थे उस समय माहौल ऐसा था कि अगर कोई किसी को कहेंगे कि प्रभुपाद जी ने ये कहा तो आपको शरण आपको इस प्रकार सरेंडर होना है, प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करना है, वो लोग खुश हो जाते थे और शरण लेने के लिए हमेशा तत्पर थे। दे आर ऑलवेज क्रेजी, दे ऑलवेज वेरी ईगर, उत्साह में थे, मैं कैसे और सेवा करूं, कि मैं कैसे और शरण में जाऊं, प्रभुपाद जी मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं प्रभुपाद जी के लिए। केवल उनके मन में एक ही बात था और कोई विचार नहीं था। तो प्रभुपाद जी को दृष्टि से बता रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, वो जो मूड है उस प्रकार की जो भावना है वो अभी बहुत कम दिखाई पड़ रही है आजकल। हमेशा लोग सोचते हैं कि पहला मैं अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के बारे में सोचूं, बाद में मेरे गुरुजी की आज्ञा है और बाद में कृष्ण का भक्ति है वो सब बारे में सोचूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा भजन कर लूंगा और मैं अपना परिवार अपना जो चीजें हैं उसके बारे में चिंतन करूंगा। उस प्रकार के भक्त जो है उनकी संख्या बढ़ गई है। वैसे भी बहुत शरणागत भक्त भी हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा कि उस समय मंदिरों में ऐसा माहौल था कि कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी प्रकार का, चाहे माता हो, चाहे प्रभु हो, चाहे युवक हो, चाहे खुद हो, बुद्धिमान हो, पामर हो, हर एक व्यक्ति के पास एक ही भावना थी, एक ही मूड था। क्या मूड था, क्या प्रकार, किस प्रकार की भावना थी, मैं कैसे प्रभुपाद जी का आज्ञा को पालन करूं, कैसे मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूं। तो इस प्रकार की तीव्र शरणागति की भावना थी। शरण लेने के लिए तत्पर थे, वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे शरण लेके। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को कहेंगे आप भगवान का शरण लीजिए, गुरु का आज्ञा स्वीकार कीजिए और गुरु का शरण लीजिए, उनको थोड़ा डर लगता है, अरे थोड़ा सप्ताह भी देख लूं, बाद में देखेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन अपना भी थोड़ा सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति ये जो केवल किताबों में रह गया और प्रवचनों में रह गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ही दिन पहले मैं सुना, हम तो उस प्रकार की आदर्श भक्त जो है उनकी संख्या कम हो गई। वो क्या सोचते हैं कि सबसे पहला मैं अपना कुछ देखभाल करूं, बाद में थोड़ा बहुत हो सके मैं सेवा करूंगा। आप किसी भक्त से आजकल पूछिएगा आप प्रभु जी थोड़ा सेवा करेंगे, आप बोलिए प्रभु जी थोड़ा जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, क्या बोलिए करने के लिए तैयार है, हनुमान जैसे आगे नहीं आते। तो सोचे थोड़ा सप्ताह भी रखो, बाद दो हो सके तो भी। तो इस प्रकार की भक्तों की संख्या बढ़ गई। बड़ा ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो संस्था का जो नींव है वो नींव क्या था, ये श्लोक था, एक अय कुरुनंदना। तो प्रभुपाद जी ने अगर कुछ कह दिया तो तुरंत वो हो जाता, आगे पीछे कुछ देखते नहीं थे। एक बार वो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी का एक चिट्ठी आया था एक मंदिर में, तो उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि प्रभुपाद जी ने कहा जो भक्त ऐसा जगह जाता है जहां कृष्ण को कोई नहीं जानता है, उधर जाके प्रचार करता है। किस भावना से प्रचार, कैसे जाता है, मुझे कहां रहने को जगह मिलेगा, कहां खाने को मिलेगा, और उधर मैं किसको जानता हूं, इन विचारों के बिना। तीन चीजों ने कहा, एक मुझे कहां रहने को मिलेगा, दूसरा मुझे कहां खाना कहां मिलेगा, تیسرا میں کسی کو جانتا ہوں کیا, میرا کوئی پہچان کا ہے کیا. یہ تین وچار کے بنا پربھوپاد جی نے کہا کہ ویسا بھکت کا چرن کا دوری جو ہے میں اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پربھوپاد جی بھی جب شیلا بچن ساکر کا جو آگیا پالن کرنے کے لیے گئے تھے, کیسے گئے؟ امریکہ گئے. تو امریکہ گئے تھے تو اس سمے ان کو کہاں رہوں گا, کہاں کھاؤں گا, اور کون میرا پہچان کا کون ہے, ان کو کوئی اس کا کوئی چنتا ہی نہیں تھا. اسی بھاونا کے ساتھ اسی چیزوں کو من میں رکھے پربھوپاد جی امریکہ گئے. تو نے کہا کہ جو ویکتی یہ کاری کرتا ہے تو اصل میں کون ہے, میرے گرو کا پرتندھی ہے. تو میرے گرو کا پرتندھی ہونے کے ناطے شری پربھوپاد جی نے کہا اس بھکت کا چرن دھولی میں سر کے اوپر دھارن کرتا ہوں. ابھی یہ جو خط آیا ایک مندر میں آیا, جیسے خط آتا تھا تو کیا ہوتا تھا, اس سمے سب بھکت لوگ ساتھ میں مل کے وہ خط کھولتے تھے. ایسا نہیں کہ پریزیڈنٹ پہلے کھولتے تھے بعد میں اس پہ خط کیا ہے کیا ہے بتاتے تھے سب بھکتوں. پربھوپاد جی خط آیا مطلب سب لوگ اپنا سیوا ختم کر کے سب لوگ ساتھ میں بیٹھ جاتے تھے. بیٹھ کے وہ خط سامنے کھول کے ادھر کا مندر کا پریزیڈنٹ یا کوئی اور ہوں گے لیڈر, تو وہ کھول کے پربھوپاد جی نے کیا لکھا وہ پڑھتے تھے. جب وہ خط کو پڑھا سب لوگوں نے کہا جے دیا, سب لوگ جے کر کے وہ لوگ نے پلان بنایا. چلو تو الگ الگ دل بنائے تھے. ایک دل کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ ایک گاڑی لے کے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایک ایسا گاؤں میں جائیں گے جہاں -40°C ہے, یعنی 0° میں برف بن جاتا ہے. آپ سمجھئے کیسے کس پرکار کا حالت ہوگا, -40°. مطلب تو ادھر گئے. کیسے گئے؟ وہ کار میں اتنا ہی پیٹرول ڈالے جتنا حد تک کہ وہ ادھر تک پہنچ سکتے ہیں. اور انہوں نے اتنا ہی پرساد دیا اپنے پیک کر کے گیا جہاں تک وہ ادھر تک پہنچ سکتے ہیں تب تک ہو جائے گا. یعنی جب اس جگہ پہنچیں گے کہاں رہیں گے کوئی ٹھکانا نہیں, اور واپس آنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, اور تیسرا چیز کیا ہے کہاں کھائیں گے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں, وہ نہ جان نہ پہچان. ابھی ایک پلان تھا. اور کچھ بھکتوں نے کچھ پلان بنایا, نہیں ہم کیا کریں گے, بس یہ ایریا میں جائیں گے, اس جگہ جائیں گے, اور اس جگہ ایک دم بالکل سب نشہ کرنے والے انیکوں جو گینگسٹر لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ رہتے ہیں, ادھر جائیں گے, ادھر جا کے ہم پرچار کریں گے. سب جتنے مندر میں ہیں ایک کو بھی چھوڑے بنا سب لوگوں نے گروپ بنا کے پلان بنایا. کیا پلان بنایا؟ یہ پربھوپاد جی کا یہ آدیش ہے. کیا آدیش تھا؟ مجھے کہاں کھانے کو ملے گا اس کی چنتا کے بنا, کہاں رہنے کا ٹھکانا نہیں ہے, اور تیسرا کہیں کوئی بھی پرکار کے مجھے پہچان نہ جان پہچان کے بنا. ایسا تین بھاونا کو لے کے جو جاتا ہے اس کا چرندری پربھوپاد نے کہا میں اپنے سر کے اوپر دھارن کرتا ہوں. اس آدیش کو پالن کرنے کے لیے کیا کیا پربھوپاد جی نے؟ ترنت سارے بھکتوں نے کیا کیا, وہ پلان بنا کے گئے. ابھی شری پربھوپاد جی کہتے تھے کس پرکار اس سمے لوگ تھے, یا شش نے کہا ان کے شش کس پہ کتنے شرناگت تھے. شرناگتی کی بھاونا اتنا تھی, تیور تھی, ہر ایک موقع ڈھونڈتے تھے میں کیسے پربھوپاد جی کی سیوا کروں. سیوا کرنے کا موقع ڈھونڈتے تھے, شرن لینے کی موقع ڈھونڈتے تھے. یہ اس پرکار کا تیورتا تھی, یہ کہ کورنندنا. تو جب تک اس پرکار کی تیورتا نہیں ہوگی ہمارا یہ جو سکام کرم ہے اس سے مکت ہونا بہت مشکل ہے. یہ سکام کرم کو کرم کانڈ کہا جاتا ہے. یہ کرم کانڈ ایسا چیز کیا ہے, یہ کیا ہے کرم کانڈ, وہ کیا ہے کہ میں کچھ ویدک نیموں کا پالن کروں گا جس کے دوارا میں بھی اس سنسار میں تھوڑا سا بھوگوں, میں کیسے سکھی رہوں, تھوڑا سا دھارمکتا بھی سویکار کروں گا, تھوڑا سا بھکتی بھی کر لوں گا, اور انتہ مول بھاونا کیا ہے میں کیسے سکھی رہوں. تو یہ جو کرمکان نامک بھینکر سا یہ انرتھ جو ہے اس سے اگر ہم کو مکت ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا, ہم کو گرو کا تیورتا سے شرن لینا ہوگا. وش سرنڈر ٹو کرشنا کمپلیٹلی. جب تک یہ تیور بھاونا سے جب تک ہم کرشن کا شرن نہیں لیں گے تب تک یہ جو کرمکان نامک انرتھ جو ہے وہ ناش نہیں ہوگا, اٹ ول ناٹ بی ڈسٹرائڈ. تو کیا رہے گا, ٹھیک ہے ہم اپنا پریوار اپنا دھندا سب کچھ ہے, تھوڑا بہت مندر میں جائے درشن کیے سوچن سن لیا تھوڑا دان دھرم کر لیا. اور مہتوپورن کیا ہے میرے جیون میں, سب سے مہتوپورن چیز کیا ہے, میں, میرا پریوار, میرا دھندا, میں, میری سنتوشٹی مہتوپورن ہے. تو اس پرکار کی جو بھاونا والے کو پرائے بھکت کہا جاتا ہے, ان کو بھکت نہیں کہہ سکتے. اور بڑا دکھ کی بات ہے اس پرکار کی دھارنا والے بھکتوں کی سنکھیا جو ہے ادھک ماترا میں بڑھ رہی ہے. تو یہ میری کہنا نہیں ہے, پربھو بھائی شیشیہ مہاتما پربھو کر کے انہوں نے کہا. تو انہوں نے پوچھا, میں کشٹ پوچھا ان سے کہ اگر اس پرکار کی بھکتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پربھوپا جی کے بارے میں بار بار بولنا چاہیے. پربھوپا جی سنستھا کو کیا چاہتے تھے, کس پرکار کی سنستھا چاہتے تھے, کیسا چاہتے تھے کہ اور کوئی بہت جو مندریں ہوتی ہیں, جیسے جیسے بھارت میں انیکوں مندریں ہوا کرتی تھی, ہوا ہے بھی, لوگ کیا کرتے ہیں, مندر بنایا, ٹھیک ہے, ادھر ایک پجاری کو رکھ دیا اور ان کو تھوڑا سا پگار وغیرہ دے دیا اور ادھر گئے تھوڑا سا پرنام کیے آگے اور مندر میں بیٹھ کے اپنے پریوار اپنے دھندے کے بارے میں چرچا کیا اور تھوڑا سا پرارتھنا بھی کر لیا تھا بھگوان سے, بھگوان میرے تھوڑا سا سمپتی دے دو, تھوڑا میرا بیٹی کا شادی کرا دو, میرا یہ کرا دو. کیول انہیں باتوں سے چرچا کرنا, چرچا سے بھرا ہوا مندر جو ہے وہ پہلے سے بھی تھا بھارت میں, لیکن پربھوپا جی اس پرکار نہیں چاہتے تھے. ڈز ناٹ وانٹ لائک دیٹ. پربھوپا جی کس پرکار کا مندر چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ادھر ایسے بھکت ہو جو کرشن کے لیے, گرو کے لیے, پربھوپا جی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جی لنک دو, اگر اس سمے وہ بھکت کہنے کہا اور پربھوپا جی بول دیتے تو ادھر سے کود جاؤ, کودنے کے لیے بھی تیار تھے. تو ایسا نہیں کہ ایک دو بھکت ایسا تھے, تو نے کہا کہ پورا مندر میں جتنے بھی لوگ تھے سب ایسے کے ایسے لوگ تھے. ایوری بڈی یو لائک دیٹ, دے آر ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ فار دا سیک آف پربھوپاد. تو انہیں پربھوپا جی کے سمے میں جس پرکار کے بھکت تھے نے کہا کہ ابھی اسی پرکار کے بھکتوں کو تیار کرنا ہوگا. اور کیسے ہوگا, جب ہم شیلا پربھوپا جی کے بارے میں بار بار چرچا کریں گے, بار بار چرچا کریں گے, وہ کیا چاہتے تھے ہم سے وہ سننا چاہیے, وہ سن کے ہمارے اندر بھی اسی پرکار کا آگ ہونا چاہیے. کرشن بھکتی کر لیں سرو کرم کتا ہے, تو ہمارے سکھ کے بارے میں کبھی وچار نہیں کرنا چاہیے. اگر ہاں شری پربھوپا جی کا سکھ کے بارے میں وچار کریں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور سکھ نہیں. تو اس سمے وہ کہتے تھے کہ بھکت لوگ کا ایک ہی ڈر تھا کہ پربھوپا جی میرے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں کی ڈر تھا کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور اس کے لیے سب لوگ کیول ایک ہی ادیش کو رکھتے ہوئے کاری کرتے تھے. کیا ایک ہی چیز کو ادیش کاری کرتے تھے کہ کیسے پربھوپا جی کو پسند کریں. اور ہر ویکتی کے جس پربھوپا جی آتے تھے مندروں میں انہیں کہا کہ ہر ایک بھکت جو ہے وہ دیکھتے تھے پربھوپا جی کو, دیکھتے تھے کہیں غلطی نہ ہم سے غلطی نہ ہو گیا ہو, وہ ناراض تو نہیں ہے. تو اس پرکار کی گرو سے یا پربھوپا جی سے پریم اور وشواس کی بھاونا کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے تھے, ملیچھ تھے, کس پرکار کیسے گٹر میں پھلے پڑے ہم لوگ, ہم بھی بڑے بڑے کاری کر پاتے تھے. نے کہا کہ ایک بھکت ایسا تھا جو ہکلاتا تھا, ان کو اپنے نام بولنے کے برابر نہیں ہوتا تھا, اپنے نام بولنے کے لیے بھی برابر نہیں بولا تھا کہ تاکہ اگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا وہ کیا بول رہے ہیں. یہ جو ہکلانے والا بھکت جو ہے وہ ایک دن میں 100 گیتا جا کے بانٹ کے آ رہا تھا, ہینڈ ٹو ہینڈ ہکلانے والا بھکت. تو ایسے تھے, تو نے کہا کچھ ایسے لوگ تھے. تو پربھو بھائی نے کہا کہ تین پریوار والوں کو بھیجا, آپ انگلینڈ جاؤ پرچار کرو. تو ان کو رہنے کا ٹھکانا نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ گئے. اتنا مہان کاریہ کیے کیوں, ان کو سب کچھ شکتی کہاں سے آیا, وہ شکتی کہاں سے آیا, اس بھاونا سے آیا. کیا بھاونا سے آیا کہ گرو کو پرسن کرنا ہے. جو ویکتی کے من میں یہ تیور اچھا رہتا ہے کہ میں اپنے گرو کو پرسن کرنا چاہتا ہوں, ان کو اتنا شکتی آتی ہے وہ خود کو معلوم نہیں پتا نہیں کہاں سے شکتی آتا ہے. لیکن جو سوچتا ہے کہ میں اپنا شکتی سامرتھ تھوڑا سا بنا کے رکھوں, تھوڑا اپنے سکھ کے لیے رکھوں اور تھوڑا بہت ہو سکے سہیوگ کروں, تو اس پرکار کی بھاونا جو رہتا ہے وہ اپنا شکتی بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بہت مہتوپورن بات ہے یہ شلوک میں. ویوسایاتمگا بدھر ایک کرو نندنا بہ شاکا ہنتاشچ بدھیو اویوسائنام. بدھیو اویوسائنام, جس کی بدھی بہ شاکا رہتی ہے. کیسے بہ شاکا مطلب مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اتنا یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत इनका सेवा भी कर लूंगा, लेकिन मेन महत्वपूर्ण है मेरा जीवन, पहला मेरा जीवन, बाद में दूसरों का, बाद में किसी बार क्यों ना हो। तो जो इस प्रकार विचार रखता है तो उनको क्या कहा गया, बहुशाकायंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम कहा गया है, अव्यवसायिनाम कहा गया है। अव्यवसायिनाम का अर्थ क्या है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी, यानी वो कभी कृष्ण भावनामृत में नहीं हो सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जो कि तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर का ये गुरु अष्टकम को कोट करते हैं। गुरु अष्टकम का जो आठवां श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न है, आप प्रभुपाद जी के मुख में प्रसन्नता लाए तो भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादान भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यायन स्तुवंतस्य यशः त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में सुबह दोपहर शाम हमको ज्ञान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, हमको ध्यान करना चाहिए ध्यायन स्तुवन, उनकी यशों का, उनका गुणों का ध्यान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में कहते हैं, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। चोरे कहा, एक सैद्धांतिक रूप में नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, सुन के बहुत मजा आया, नहीं, एक सैद्धांतिक रूप में खाली सुनना नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। जब अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, आप देहात्म बुद्धि से तुरंत परे हो सकते हो। आप कितना भी कुछ भी कर लो, देहात्म बुद्धि से तभी परे हो सकते हैं जब हम ये कह गुरु नंदना, जब गुरु की जो शरणागति लेंगे। शरण लेना का अर्थ क्या है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, फॉर द सेक ऑफ गुरु के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। अभी आप सबको मालूम है कि हमारे दिसंबर महीने में मैराथन होता है। मैराथन का अर्थ क्या है कि हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को बांटते हैं। वैसे तो साल भर बांटना चाहिए, लेकिन ये जो दिसंबर के समय में बहुत तीव्रता से बांटते हैं। तो क्या हुआ, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हमारे संस्था में कैसे शुरू हुआ, बहुत सारी किताबें प्रभुपाद छाप दिए थे और अपने भक्तों का बांटो, ये भक्त को पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो गाड़ी में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उस गाड़ी में बहुत दूर जा रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर, बहुत सारे किताबें भरे हुए थे उस गाड़ी में, दो भक्त लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ, पेट्रोल खत्म होने को आया। अभी क्या करेंगे, पेट्रोल बंक में गए तो पेट्रोल भरे, भरने के बाद दो भक्त बैठे थे, एक ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाद में और एक भक्त था, तो भक्त ने कहा कि अभी पेट्रोल का पैसा दो। उसे लगता है मेरे पास तो नहीं है, तो मैं सोचा तुम्हारे पास था, तो इससे सोचा उसके पास पैसा है। तो क्या हुआ, वो दोनों पेट्रोल भर दिए गाड़ी में, अभी गाड़ी लेके जा रहे, वो क्या करें, एक दूसरे का मुंह देख रहे। अभी तुरंत एक भक्त के मन में आइडिया आया, तूने तुरंत पीछे गया और जाके एक भगवद गीता निकाला, भगवद निकाल के उन्होंने क्या किया, वो पेट्रोल पंप वाले को दिया। तो इसने लिया, तो पेट्रोल पंप वाला समझ गया एक दूसरे का मुंह देख रहे मतलब क्या है, दोनों के पास पैसा नहीं है। तो देख के किताब को देख, वो आकर्षित हो गया, बोला कि ओके यू गो। तब ये भक्त लोग आए मंदिर में, आके एकदम बड़े उत्साह के साथ बोले, आज हमने एक किताब बांटा, और कैसे बांटा, ये बड़ा स्टोरी बन गया, पेट्रोल पंप में बांट सकते, इसका मतलब ये है। सब किताबें लेके गए, पेट्रोल पंप में बांटना शुरू किया। ये बच्चे सोचा पेट्रोल पंप में बांट सकते, एयरपोर्ट में बांट सकते हैं, चलो एयरपोर्ट में गया, कोई उधर गया। तो देखिए कहां से शुरू हुआ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोल पंप में शुरू हुआ। नहीं तो उन लोगों के मन में कोई आइडिया नहीं था कैसे किताब बांटेंगे। तो आइडिया भगवान देते हैं। अगर गुरु का सेवा करना चाहते हैं ना, तो कृष्ण कुछ भी करते आपके लिए, केवल आइडिया नहीं, केवल विचार ही नहीं, कैसे कैसे करना चाहिए, केवल आपको बुद्धि नहीं देते, बल्कि साथ साथ में सुविधा भी देते, सब कुछ देते हैं। खाली हमारे अंदर की कमी क्या है, हमारे अंदर शरणागति की कमी है। देखिए अगर गुरु जो है कृष्ण की सेवा के लिए मदद करते हैं, उसी प्रकार गुरु की सेवा के लिए हमको कौन मदद करते हैं? कृष्ण मदद करते हैं। कृष्ण विल हेल्प यू। एक बार आप जानते हो चैतन्य चरितामृत में, तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा निकल पड़े, वो पूर्व ब्राह्मण के साथ उनका संपर्क हुआ। ये जो पूर्व ब्राह्मण के साथ जब संवाद हुआ, पूर्व ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का चरण धोए, सब कुछ किए, भोजन खिलाए, उसके बाद उनका उच्चिष्ट ग्रहण करके चैतन्य महापुरुष ने कहा कि अभी मैं इस संसार से तंग आ चुका हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तब गुरु ब्राह्मण को चैतन्य महापुरुष ने कहा कि आ गया है, समझ कहो निरंतर हरिनाम लो और जो भी जारदा को तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो। अगर तुम इस प्रकार उपदेश दोगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो लोग देखिए, वो कूर्म ब्राह्मण क्या चाहता था कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाऊं, लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं, तुम मेरे साथ में आता हो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। कब आऊंगा? जब तुम जारेदास को तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब आप ये किताब लेके जाओगे, लोगों से मिलने के लिए जाओगे, किताब बांटने के लिए जाओगे, तो ये समझ लीजिए आपके साथ कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के साथ पूरा संसार है, सब कुछ है, खाली किसकी कमी है हमारे पास? शरणागति कमी है। वो मैं ये करना चाहता हूँ, किताब बांटना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, ये गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ, इस प्रकार की तीव्र इच्छा की कमी है बस। अगर इस प्रकार की तीव्र इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप सोच सकते हो कि अफ्रीका के जंगलों में मंदिर का निर्माण कर सकता है कोई? किया, यानी असंभव संभव हो गया। कैसे संभव हुआ? ये गुरु को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर ये तीव्र इच्छा नहीं है तो संभव कार्य भी बराबर नहीं हो पाता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, ओ मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वो है, बहुत सारे चाहिए। सर्व कर्म कृत है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब आप कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करने लगोगे, तो बाकी जो भी करने के लिए जो ये चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक अपने आप होता है। ये बहुत सारे जो भक्त हैं जो तीव्रता से शरणागति को स्वीकार किए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनका यही अनुभव है। क्या अनुभव है? जब हम कृष्ण के लिए काम करते, गुरु के लिए काम करते, अपना काम ऑटोमेटिक होता है। और अपना काम करने जाएंगे तो ना कृष्ण का काम होगा ना अपना काम होगा। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट रास्ता क्या है? यही है रास्ता, यही है कि सबको जो भगवान के ऊपर छोड़ो और गुरु का सेवा करो। जस्ट गो एंड फाइंड अप होके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप देखिए कि अपना काम जो भी होना था अपने आप होता जाएगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज आए थे, ने कहा कि हमलोचन, बोला हाँ महाराज, ये मंदिर कौन चलाता है, ये सब चीजें क्या क्या, कौन क्या करता है? मैंने कहा कि मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, हंस रहा था। तो तुम्हारा मंदिर क्या ऑटोमेटिक टेंपल है क्या? तो मैंने कहा आज थोड़ी थोड़ा कम इधर जो पढ़ लेता हूँ, इधर उधर चर्चा करते हैं, इधर प्रवचन होता है, इधर प्रचार कर लेते हैं, जब मौका मिलता है हम कृषि वाले चर्चा करते जब करते हैं तो, और थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी का सेवा करना चाहते, सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कहा कि ओके गो अहेड। यार मुझे कहना ये था कि आप केवल प्रचार करते रहो तो अपने आप सब कुछ प्रकट होता जाएगा, एवरीथिंग इज मैनिफेस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये विश्वास असत में भक्त को चिंता करना, इससे बड़ा गुना कुछ और नहीं है। मान लीजिए थोड़ा बहुत वो नियमों में इधर उधर थोड़ा सा आगे पीछे कभी हो जाता है किसी कारणवश, वो इतना बड़ा गुना नहीं है जितना चिंता करता है मेरा क्या होगा, इससे बढ़कर कोई गुना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उनकी माता पिता है, बड़ा अच्छी तरह से देखभाल करे, बड़े मेरी है माता पिता, वो बच्चा कभी शरलत करता है, कभी नटखट करता है, माता पिता उतना वो दुखी नहीं होंगे, थोड़ा हो जाएंगे, थोड़ा डांटेंगे पटकारेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक दिन वो बच्चा के पिताजी को कहता है, पिताजी थोड़ा सा मेरे नाम पे थोड़ा सा आप 10 लाख रुपए रखो, पिताजी बोलते क्यों? फिर पता नहीं आप कुछ भी कभी भी हो सकता है, मुझे धोखा दे सकते हो आप, छोड़ के जाएंगे लगता है। भिखारी को देखा लगेगा दुख लगेगा मेरे ऊपर इसका, हाँ मुझे चिंता हो रही है। जब बच्चा बोलता है ना माँ पिता को, मुझे चिंता हो रही है मेरा क्या होगा, आप मुझे देखभाल करेंगे कि नहीं, मम्मी को बोलता है पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या मैं दूसरे घर में बोल के रखूँ आप मुझे उनसे खाने के लिए आप मुझे देंगे कि नहीं मालूम नहीं मुझे, हाँ माँ को कैसे लगता है। जैसे एक पत्नी बोलती है पति को, देखिए पता नहीं आप कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए मैं दो तीन लोगों को भी बोल के रखती हूँ, वो पति को क्या लगेगा। तो वैसे ही कृष्ण को लगता है, वैसे ही गुरु को लगता है, जब हम उनको बताएंगे हाँ अगर आप पूरा आपका सेवा करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो चिंता हो रही है। इसलिए भक्त को निश्चिंत होना चाहिए, केवल उनका एक ही चिंता होना चाहिए, मैं कैसे गुरु का सेवा करूँ। तो जब इस प्रकार की चिंता को अपने जीवन में धारण करेंगे, आप देखिए भक्ति में कितना आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। अक्सर में आप हवा में उड़ते रहेंगे, नहीं तो फिर जमीन पर सोए रहेंगे रोते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके अंदर प्रभुपाद जी अपने कमेंट में भी ने क्या कहा, कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकर्म कृतः, सब कुछ हो गया, कृष्ण भक्ति किया तो सब कुछ हो गया, सब कुछ करने गया वो भी नहीं हुआ, कृष्ण भक्ति भी नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति कर लेन सर्वकृत, इसको विश्वास कहा जाता है, इसको श्रद्धा कहा जाता है, यानी दूसरे शब्दों में ये जो श्लोक है ये विश्वास और श्रद्धा के विषय में चर्चा करने वाला श्लोक है। अभी मैराथन आ रहा है, सब भक्तों के निवेदन है कि आप सोचो, आप स्मरण करो प्रभुपाद के विषय में और उन्हीं ग्रंथों के विषय में सोचो, सोच के जितना हो सके उतना नहीं, मैं इतना करके दिखाऊंगा, कोई अंत नहीं है प्रचार का। कोई बोलेंगे प्रभु जितना हो सके उतना करेंगे, ये मतलब क्या ढीला करने वाली बात है, ऐसे भक्तों को साथ में रखेंगे हमारा भी उत्साह कम हो जाएगा, जितना हो सके उतना करेंगे, ऐसा नहीं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप कितना बोलिए उतना करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, ऐसे तीव्र भावना के साथ सबको लग जाना चाहिए। तो हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त जो है इस प्रकार की भावना से रहते हैं, लेकिन आप सबको भी तीव्र उत्साह के साथ रहना चाहिए, एंथुसियाज्म शुड बी देयर। अभी आप सब लोग विचार कीजिएगा, अगले हफ्ते से आप सबको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, आपके काउंसलर्स को भी बुक्स मिल जाएंगे, हाँ भगवदगीता मिलेंगे, उन सबको आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बांटने के लिए प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं, ठीक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।